शांति, ओम शांति। आज हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हम सब की अति स्नेही गुलजार दादी जी का स्मृति दिन हम मना रहे हैं और सुबह से ही हम उन्हें स्नेह से याद भी कर रहे हैं। उनके साथ के संस्मरण भी हमने अपने वरिष्ठ भाई बहनों से सुने और दादी ने हमें उस स्नेह का रिटर्न भी दिया। जब बाबा और दादी जी को भोग लगाया तो दादी जी स्वयं आए और हम सबको अपनी रूहानी दृष्टि से शक्ति भरी। तो अभी भी हम जो हमारी वरिष्ठ बहनें दादी जी के बहुत समीप रही हैं, मंच पर आप जिन बहनों को देख रहे हैं सब दिल्ली जोन के हैं, जिन्होंने दादी जी की राइट हैंड बनकर के अपनी सेवाएं दी हैं और अभी कुछ ही समय में हमारे मध्य में आदरणीय शुक्ला दीदी जी, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी भी उपस्थित होंगे। तो हम सब दादी जी के साथ के इनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। तो जब तक आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हमारे मध्य पहुँचे, मैं अनुरोध कर रही हूँ अनुसुईया बहन जी, आप महिपालपुर दिल्ली की इंचार्ज हैं, आपके कनेक्शन में 10 सेवा केंद्र चलते हैं और वैसे आपका हरिनगर से कनेक्शन है। आप 1965 से आप ज्ञान में आए और 40 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यूथ विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम आपसे सुनेंगे दादी जी के साथ की प्रेरणाएं।
ओम शांति। हम सब शांति की स्थिति में स्थित होकर एक बार पुनः उच्चारेंगे ओम शांति। तो आज का दिवस हम सब के लिए स्मृति दिवस है। आज के दिवस हमारी दो परम श्रद्धेय दादियों ने साकार से आकार की सेवा को प्रस्थान किया। बहुत अच्छी साकार की सेवा करते हुए हमारे सामने एग्जाम्पल रही हमारी परम श्रद्धेय चंद्रमणि दादी जी, जिनके द्वारा मैंने ये ईश्वरीय जन्म लिया, और परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी, जिनको आज विशेष हम सभी बहुत श्रद्धा से स्नेह से याद कर रहे हैं। हमारी सर्व दादियों का जीवन साकार बाबा के साथ बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर जीवन रहा और उन्होंने हर बात साकार बाबा के द्वारा सीखी और जीवन में उतार कर हम सब के सामने एग्जाम्पल बने। जैसा हम सभी को बाबा सदा याद दिलाते हैं कि शिव बाबा का पहला गुण ज्ञान का सागर है, तो ये विशेषता हमारी सभी दादियों ने अपने जीवन में उतारी। और जैसे हम देखते हैं हमारी गुलजार दादी जी ज्ञान की बहुत महीनता को समझते हुए अपने को बाबा के सामने बिल्कुल समर्पित किया हुआ था। और समर्पित की निशानी यही होती है जो सवेरे से हम सुन रहे हैं, निश्चिंत बुद्धि। दादी सदा हर बात में निश्चिंत रहती थी, क्योंकि दादी को बाबा ने जो हम सबको शिक्षा दी है, समझाया है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो दादी जी को इस ड्रामा के ऊपर संपूर्ण रूप से निश्चय था। इसलिए हर घटना को, हर बात को वो निश्चिंत होकर के देखती थी, इसलिए सदा बिल्कुल निश्चिंत रहती थी। कभी उनको ड्रामा के ऊपर, स्वयं पे या बाबा पर कभी संशय नहीं आया। जैसा हम सबको पता है कि दादी जी का लास्ट का जो समय था उसमें दादी जी की तबीयत थोड़ी नाजुक थी, और अगर कोई भी बाबा का बच्चा बनता है और अगर लास्ट के समय पर अगर तबीयत ठीक ना हो, तो जो अच्छे पुरुषार्थी नहीं होते या ज्ञान का जिस पर पूरा निश्चय नहीं होता, तो प्रश्न आ जाता है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो संपूर्ण रूप से समर्पित है बाबा के ऊपर भी और ड्रामा की हर सीन को भी समझते हुए, ज्ञान को इतना गहराई से समझा हुआ है, तो हम सबको पता है सेवा करने के विभिन्न ढंग हैं। जैसे वाचा द्वारा हम सेवा करते हैं, मन द्वारा सेवा करते हैं, और एक बहुत अच्छा माध्यम है व्यवहार द्वारा सेवा करना। तो जब हमारी चाल चलन बहुत अच्छी होती है वो भी सेवा करती है, किंतु एक बहुत बड़ी चैलेंज जब किसी के जीवन में बीमारी आती है, तो बीमारी की स्थिति में भी हम इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं, ये दादी जी का बाबा के प्रति जो निश्चय था वो हमने सामने से प्रत्यक्ष रूप में देखा। दादी जी ने अपनी उस तबीयत के अंदर बिल्कुल हम सब के सामने सिद्ध कर दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, और उनकी वो जो निश्चिंत स्थिति थी वो आज हम सभी को शिक्षा दे रही है, समझा रही है, गाइड कर रही है कि हमारे सामने और परीक्षाएं जब आए वो तो है ही, लेकिन अगर शरीर की भी समस्या आए तो हम कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। हम सबको पता है दादी जी जब बॉम्बे में थे तो दादी जी की तबीयत जैसे नाजुक थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत शांत और शीतल थी। ये आज का दिवस हमें स्मृति दिला रहा है। इससे जितने भी डॉक्टर्स ने दादी जी की सेवा की थी वो सब बाबा के बहुत नजदीक आ गए, भगवान को मानना शुरू किया, और दादी जी के पास जाकर वो कुछ लेकर आते थे। ये निशानी है संपूर्ण समर्पित बुद्धि की। तो ये सब हमने आज दादी को जैसे हम याद करते हैं, और जब हमारे सामने भी ऐसी परीक्षा आती है या किसी और के सामने भी ऐसी नाजुक परिस्थिति आती है, तो उस वक्त दादी जी की ही बातें हमें बहुत मदद करती हैं। दूसरी बात, एक अच्छी टीचर की निशानी होती है एक अच्छा स्टूडेंट होना। तो गुलजार दादी के अंदर, दादी हमारी बहुत अच्छी टीचर रही हम सब जानते हैं। वैसे तो हमारी सभी दादियों के जो वाचा शक्ति थी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी अगर हम, वैसे करना नहीं चाहिए कंपैरिजन, फिर भी अगर देखते हैं तो हमारी गुलजार दादी जी का जो कहने का तरीका होता था वो इतना सहज और श्रेष्ठ होता था कि किसी की भी बुद्धि में सहज बैठ जाता था। और वो इसीलिए था कि दादी जी टीचर तो अच्छी थी पर उससे पहले वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। दादी जी का बाबा की बुल्ली से बेहद प्यार था। तो आज का दिवस हमें ये भी याद दिला रहा है कि अगर हमारा बाबा से प्यार है, दादी से प्यार है, तो जैसे दादी जी खाली वक्त में सदा मुरली की स्टडी किया करती थी, तो आज ये भी बात हमें अपनी स्मृति पलट पर लानी है। तीसरा, मैंने देखा जब हम छोटे थे, अभी दादी जी के तब इतना बड़ा विस्तार हमारे इस यज्ञ का नहीं हुआ था, और इनिशियल पीरियड शुरू वाले दिन है, तो दादी जी भी जो ट्रैवल करते थे, जब ट्रेन में आते थे तो हम सभी, ये एसी वेसी तो बाद में शुरू हुए हैं, मुझे वो दिन याद है, दादी भी स्लीपर क्लास में ही ट्रैवल करते थे, और वो मुझे बहुत सदा याद रहता है। तो जब हमें पता होता दादी भी इसी ट्रेन में है, तो हम लोग तब पुरानी दिल्ली से ही हम लोग लिया करते थे ट्रेन, तब ये दिल्ली कैंट वगैरह जो दिल्ली वाले जानते हैं वो इतना पॉपुलर नहीं था, तो हम भी दिल्ली पुरानी दिल्ली से ही लेते थे और दादी जी भी वहीं से लेते थे। तो मुझे याद है कि मैं हम और जिनको पता लगता है जरूर हम दादी से वहां पर मिलने जाते थे। तो जब हम खिड़की के पास बाहर थे और दादी जी अंदर थे, तो वहां पर ये बहुत लर्न करने वाली बात है जो मैं आपके सामने बता रही हूं। तो वहां पर एक आपको पता है ना ट्रेन, वहां प्लेटफॉर्म पर लोग बनाते रहते हैं, अंडा वंडा बना रहे थे कुछ वो, और दादी का बिल्कुल उसके सामने ही था, जो दादी का जो कोष था बिल्कुल सामने था। तो हम लोग तो गया से बड़ा बुरा सा लगा हमें कि ये क्या बना रहे, स्मेल आ रही है। अब वो तो अपनी रेड़ी को हटाएंगे नहीं। तो दादी जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे इनका तो खाना है ना, इनका तो ये भोजन है। दादी जी को उस स्मेल से बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। हम जितनी चार पांच बहनें थी, कन्याएं थी हम, तो ऐसे नाक पर रख करके और मैं बड़ी बदबू सी आ रही थी। और दादी जी ने बड़े प्रेम से कहा कि इन लोगों का खाना है ना ये। तो मुझे वो दिन सदा याद रहता है कि देखो दादी जी हर बात को कितना अच्छी तरह समझ करके स्वीकार करती थी। ये अच्छे ज्ञान की निशानी है। तब से लेकर हम भी ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी का कोई खाना है तो भले वो ठीक नहीं है ये तो हमें पता है, लेकिन जो खा रहे हैं तो उनको वो खाना ठीक लगता है। तो हमें कभी भी ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि ये खाना अच्छा नहीं है, इससे स्मेल आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है और उसको आज हम दादी की तरफ से गिफ्ट के रूप में स्वीकार करेंगे। मैं दादी के पास, जैसे हमको पता है शुरू में इतना ज्यादा विस्तार नहीं था और मैं भी नौकरी करती थी, तो मैंने दादी को फोन करके पूछा कि दादी क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। तो दादी ने बड़े विलिंगली कहा हाँ हाँ आ जाओ। तो मैंने कहा मैं लंच टाइम में आऊंगी। तो मैं दादी के पास गई लंच टाइम में। तो जैसे आज सवेरे हम मुन्नी दीदी की सुन रहे थे ना बातें कि उनको अगर प्रकाश अपनी बड़ी दादी से कुछ दिक्कत होती थी तो गुलजार दादी के साथ शेयर करती थी, क्योंकि दादी सभी की बातों को बहुत प्रेम से सुनती थी। तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि मुझे दादी से कुछ सोल्यूशन लेना है। तो मैं दादी के पास लंच टाइम में गई, एक दिन नहीं दो तीन दिन गई। दादी ने हर बार मुझे वेलकम किया कि हाँ आओ बैठ के बात करेंगे। तो मैंने दादी को जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वो शेयर किया। तो दादी ने कहा, और आपको पता है हम सेंटर पे रहते हैं तो थोड़ा सा संबंधों में कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे परिवार वाले लोग हैं उनका भी होता है, तो सेंटर में भी हम रहते हैं तो विभिन्न तरह के संस्कार होते हैं सबके। तो मैंने दादी को कहा दादी ऐसे ऐसे बात है। तो मुझे आज भी सदा दादी की वो लाइन याद आती है, कहती है अनसुईया तुम कहेगी ना इस वाले सेंटर पे जाना है, जहां तुम इशारा करेगी मैं तुमको वही भेज दूंगी। पर एक बात याद रखना, और मैंने भी याद की हुई है, आप भी याद कर लीजिएगा। दादी ने कहा तुम्हारा जो हिसाब किताब है वो तुम्हारा ही है। तुम जिस सेंटर पे जाओगी वहां पर ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि लोग बदल जाएंगे दूसरे सेंटर पर आपका जो हिसाब किताब है वो आपके साथ रहेगा। आज आपको इन फलाने फलाने से कुछ कुछ आ रही है चैलेंज, लेकिन जब दूसरे सेंटर पे जाओगी तो फिर दोबारा आप मेरे पास आओगी और कहोगी दादी यहां पर भी है कुछ, पहले वहां पर था आज यहां पर है। तो वो ना वो गलत है और ना ये जो नए सेंटर जहां आप जाओगी वहां गलत है, आपका हिसाब किताब है। जब तक आप हिसाब किताब को चुकतू नहीं करोगे तो ये आपके पीछे पीछे सदा ही आता रहेगा। तो मैं इस बात को सचमुच अनुभव भी करती हूँ, आप सभी भी अनुभवी हैं कि हम जो करते हैं वो हमारे साथ सदा ही रहता है, अच्छा भी रहता है, और जो कम किया है वो कम वाला गलत भी रहता ही है। तो दादी जी को मैं सदा याद रखती हूँ कि हाँ दादी आपने बिल्कुल ठीक मुझे शिक्षा दी थी, समझाया था, सिखाया था। और आज तक भी ऐसा ही महसूस होता है कि हमारा हिसाब किताब ही हमें चुकतू करना है, उसके लिए और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए दादी जी अगर निश्चिंत थी और दूसरों को भी निश्चिंत किया करती थी, तो उसका आधार ज्ञान की जो महीनता थी, ज्ञान को जो ठीक से जीवन में स्वीकार किया हुआ था, समझा हुआ था, ये सब बातें दादी जी को भी निश्चिंत करती रही। और हम सब भी आज जब दादी को याद कर रहे हैं तो इन सब बातों को अपने जीवन में हम समझकर चलेंगे तो जरूर हमारा जीवन भी दादी समान निश्चिंत रहेगा। तो आज हम सभी अपने मन से, दिल से दादी जी की सभी शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए दादी के समान बनने का हम जरूर लक्ष्य रखेंगे, यही हमारा सच्चा श्रद्धा सुमन है। ओम शांति।
सचमुच हमने देखा कि दादी जी किसी भी परिस्थिति में बहुत निश्चिंत और निसंकल्प रहते थे। बाबा पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि, जैसे अनुसुईया बहन सुना रहे थे कि पूर्ण समर्पित बुद्धि थे दादी, तो जैसे कि बाबा के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है। और सचमुच बीमारी के समय दादी सेवा के निमित्त बने। आज हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना वो उसी का ही परिणाम है कि दादी जी जब बॉम्बे में थे और जब उनका वहाँ इलाज चल रहा था, डॉक्टर अशोक मेहता जी उनका इलाज कर रहे थे, वो दादी जी के व्यक्तित्व से, उनकी धारणा से इतने प्रभावित हुए कि दादी जी के कहने पर फिर वो यहाँ माउंट आबू आए। और जब उन्होंने यहाँ पूरे विद्यालय की सेवाओं को देखा तो उन्होंने फिर ये संकल्प दिया कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यहाँ पर इतने लोग आते हैं, और उसका परिणाम कि आज सिर्फ ग्लोबल हॉस्पिटल ही नहीं, ऐसे बॉम्बे में भी इतना ही बड़ा, इससे भी अधिक बड़ा एक हॉस्पिटल है अपना। यहाँ शांतिवन में भी दो हॉस्पिटल हैं और अब एक नया हॉस्पिटल और बनने की तैयारी है। तो और अभी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी जो हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं, दादी जी तो कमला नगर दिल्ली में जब सेवाएं शुरू हुई और दादियां जब वहां सेवा के लिए रहने लगी, वो पहला सेंटर था दिल्ली में। और उस सेंटर से आप कुमारी, पहली कुमारी, जो कुछ कुमारियां निकली उनमें से आप एक हैं, तो दादी जी के साथ के तो आपके बहुत समीप के अनुभव हैं, आप अंग संग रहे हैं उनके। और वर्तमान में तो आपने सुना ही है दीदी दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्रों की संचालिका हैं, रशिया के भी करीब 50 से भी अधिक सेवा केंद्र जिनके आप डायरेक्टर हैं, और पूरे विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पर आपने, जैसा आपका नाम है चक्रधारी, तो ऐसे चक्रवर्ती बनकर के अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और करते रहते हैं। तो दीदी से हम अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। मैं बैठते ही याद कर रही हूँ इस रूहानी गुलशन की शोभा, रूहानी खिले हुए पुष्पों से बहुत सुसज्जित थी। कहाँ मामा और बाबा और अपनी आदरणीय दादियाँ, धीरे धीरे करके पंछी संपन्नता की स्थिति को प्राप्त होते हुए ईश्वर के सहयोगी बन बाबा की सेवा में आज भी तत्पर हैं। आज उनमें से एक रतन जिनकी चर्चा हम प्रातः से सुन रहे हैं, आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी, जिन्हें बाबा ने गुलजार कहकर पुकारा और फिर उनका नाम गुलजार प्रसिद्ध हुआ। गुलजार दादी जी के साथ मुझे लगभग प्रारंभिक जीवन में 12 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय कमला नगर जो कि विश्व का प्रथम सेवा केंद्र है, उसी सेवा केंद्र में आदरणीय गुलजार दादी जी रहते थे। और मैंने जब अपना प्रथम दिन सेवा केंद्र में समर्पण रूप से बिताया, वो मेरा प्रथम स्थान कमला नगर था और आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के अध्यक्षता में ही मेरा जीवन जन्म पला पोसा। दादी जी हमको सुनाया करते थे कि जब मैं प्रथम माउंट आबू से आई, जैसे प्रातः आशा बहन सुना रहे थे, तो यही कहा कि ट्रेन में तो हम बैठ गए, क्योंकि बाबा ने एक बार खास कहा था, तुम ज्ञान गंगाएं हो, गंगा बहती ही अच्छी है, खड़ा पानी तो तालाब या नाला ही कहलाता है। तो जब तुम गंगाएं हो तो गंगा एक स्थल पर नहीं रहती, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर होती हुई अनेक आत्माओं को पावन करने का कर्तव्य करती है। तो कैसे गुलजार दादी जी भी शुदादी के साथ, बाबा ने कहा तुम लखनऊ को जाना है, तो दादी का अनुभव सुन रहे थे। तो दादी ने कहा, उस समय बहुत बैगरी लाइफ थी, बहुत साधारण जीवन चल रहे थे, तो बिल्कुल पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तबके होते थे ट्रेन के, तो थर्ड क्लास की टिकट लेकर हम बैठ गए। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई किस प्रकार खा रहा है, और हमने 14 वर्ष बचपन से लेकर यज्ञ में बिताए और उसके पश्चात माउंट आबू में, जबकि अपना ही संसार था, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो इस दुनिया को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि ये किस प्रकार की दुनिया है। तो कहा कि कुछ स्टेशन तो हम चले उन लोगों के साथ बैठ करके, लेकिन रास्ते में उतर गए, एक स्टेशन आया जहां कुछ टाइम पर गाड़ी खड़ी थी, तो हम भी उतरे और हमने पूछा किसी से कि इस गाड़ी की संभाल करने वाला कौन होता है, तो किसी ने कहा स्टेशन मास्टर होता है। तो उस समय ये बहने पजामा कुर्ता ही पहनती थी, बाल खुले रखती थी, काजल बड़ा बड़ा पहनती थी, और योगी जीवन था। तो कहा कि हम स्टेशन मास्टर के पास गए, तो हमने उनको कहा कि हमने देखा है आपके गाड़ी के कितने डिब्बे खाली पड़े हैं, लेकिन आपने हमें टिकट लेने के बावजूद भी रश के डिब्बे में क्यों बिठाया, इसलिए हम ऐसे रश के डिब्बे में नहीं बैठेंगे, प्लीज जो खाली डिब्बे हैं उसमें से किसी एक खाली डिब्बे में हमको बिठाओ। तो उसने कहा कहाँ खाली डिब्बे हैं, तो खाली डिब्बा फर्स्ट क्लास का ही था, जो उस समय चार चार के ये छः छः के वेगन बने हुए होते थे, तो वो खाली था। तो कहा ये देखो ये खाली है, ये देखो ये खाली है। तो उसने कहा आपकी टिकट कौन सी है, कहा टिकट हमने ली हुई है। तो टिकट देखी, टिकट तो थर्ड क्लास की थी, तो कहा ये तो फर्स्ट क्लास है। कहा तो क्या होता है, टिकट तो ली हुई है ना, उनको ये मालूम ही नहीं फर्स्ट क्लास की टिकट और थर्ड क्लास की टिकट का मतलब क्या है। कहा टिकट तो हमने ली है। उसने कहा लेकिन थर्ड क्लास वालों को मैं फर्स्ट क्लास में कैसे बिठाऊं। कहा भाई हमने तो बैठना है, हम उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, वो सिगरेट पीते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं। आखिर स्टेशन मास्टर को तरस आ गया, तो उसने उनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिठाया और उसमें यात्रा करके वो वहां पहुंचे। अब पहुंच कर कहां जाकर रहना है, कोई जगह तो निश्चित थी नहीं। ये दादी कई बार अपनी स्टोरीज मुझे सुनाया करती थी। कहा मैं वहां पर जब चली तो गई, और शांतामणि दादी भी थे, तो कहा कि हम जाकर कहां रहें। तो हमने पार्क में सारा दिन बिताते थे और रात को सोने के लिए एक धर्मशाला कहते थे यहाँ होती है, जहां लोग जिनको अपना ठिकाना रहने का नहीं, वो जाकर धर्मशाला में रह जाता है। तो हमको भी अपना ठिकाना तो था नहीं, हम भी धर्मशाला में जाकर रह जाते थे और पार्क में सारा दिन बिताते थे, सुबह से शाम तक पार्क में ही बैठते थे, ताकि कोई भी आएंगे तो पहले बहने क्या करती थी, एक बैठ जाती थी योग में और दूसरे कोई पूछता था ये कौन है, वो कहती थी योगन है, ये योग लगा रही है, तो वो उसको एडवर्टीजमेंट करती थी, वो योग लगाती थी। इस प्रकार आने वाले हमारे पास कई बैठ जाते थे, तो कहा एक सिंधी माता थी जिसका नाम था सावित्री, तो वो भी पार्क में घूमने के लिए गई, तो उसको भी लगा कि सिंधी बहने हैं और 24-25 साल की, इतनी ही ज्यादा एज तो थी नहीं, जवान लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तो उसने कहा कि आप सारा दिन मेरे घर में आ जाओ और रात को जहाँ आपका स्थान हो वहां चले जाओ, क्योंकि उनका पति ब्रह्मा कुमारी के काफी एंटी थे, तो वो सुबह सुबह आ जाती थी और रात को फिर उनके घर से जाती थी, तो इस प्रकार आने वालों को थोड़ा बहुत ज्ञान सुना देती थी। एक बार अचानक वो निकल रही थी तो उसका पति दूसरे गेट से अंदर आ रहा था, तो जो ही पति को देखा तो दादियां थोड़ी ऐसे हो गई कि अरे इस पति ने देख लिया हमको, लेकिन दादी बड़े आराम से आती रही, पति या तो क्या हुआ, हम तो भगवान के बच्चे। तो उस भाई को जो सावित्री के पति थे जो बहुत एंटी थे, उनको गुलजार दादी से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार होते ही उसने आकर पूछा अपनी पत्नी से कि ये देवियां यहां से निकल के जा रही थी, ये कौन है? कहा ये देवियां, पति के प्यार से पूछने पर वो हिम्मत आ गई, तो उसने कहा कि ये देवियां यहाँ बगीचे में आकर ज्ञान सुनाती हैं और अभी रात को धर्मशाला में सोती हैं और सुबह वहां से थोड़ा बहुत अपने खाने का बना करके फिर बगीचे में आती हैं। तो खास उन्होंने कहा कि नहीं, इन देवियों को तुम अपने घर में लाओ और इनको यहाँ पर ठहराओ। तो प्यारे बाबा ने दिव्य साक्षात्कार करा के उस आत्मा को प्रभावित किया, लेकिन किसी के घर में कब तक रहना? तो दादी ने कहा कि एक बार हमने किसी ने हमने पूछा कि यहाँ मकान लेते हैं तो किससे पूछते हैं मकान का, तो किसी ने कहा कि यहाँ चीफ मिनिस्टर बड़ा है, वही मकान वगैरह दे सकता है। कहा हमने कहा तो हम दो बहनें चीफ मिनिस्टर के पास चली गई, उन्होंने पूछा क्यों आए हो, पहले पीए पूछता है, पीएस ने बात की। कहा हमने कहा हमें चीफ मिनिस्टर साहब से ही मिलना और किसी से कोई बात नहीं। तो चीफ मिनिस्टर से मिलकर के कहा कि हमें किसी ने बताया है कि यहाँ एमपीज के एमएलए के क्वार्टर खाली पड़े होते हैं और वो क्वार्टर बाऊजी आप ही हमें दे सकते हैं, इसलिए हमको एक एमपी क्वार्टर मिलना चाहिए। का किस लिए? का हमने ज्ञान सुनाना है। का वो तो एमपीज के क्वार्टर है, वो आप लोगों को कैसे देंगे? तो का कैसे देंगे, हम कोई परमानेंट थोड़ी लेने आए, लेकिन जब तक आपके एमपीज नहीं आते, एमएलए नहीं आते, जो खाली रहे वो हमको दे दो तो हम वहां ज्ञान सुनाएंगे। तो दादी ने कहा वहां पर वो चीफ मिनिस्टर ने हमको एमएलए का और एमपी का, एक बार एमपी का दिया, एक बार एमएलए का क्वार्टर दिया और हमने वहाँ क्लास करनी शुरू की और हमारे स्टूडेंट्स भी एमएलए और एमपी हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर ज्ञान सुनते थे। लेकिन गुलजार दादी जी को माइक पर बोलना मुश्किल लगता था, कहीं कह दो 4-6-8 में भाषण करना है तो दादी कहती थी मैं भाषण नहीं करती थी। लेकिन यही जो प्रथम जिसको साक्षात्कार हुआ था दादा राम, वो क्या करता था, माइक लाकर नीचे रख देता था और कपड़े से ढक देता था और सामने अपने दोस्त मित्रों को लाके बिठाता था और दादी को कहता था ऐसे ही आप बात करो, ये बात सुनने के लिए आए। तो इस प्रकार दादी काफी ज्ञान सुनाती थी। दादी ने कहा जब हमको एमएलए एमपी के क्वार्टर मिलने बंद हुए तो हमने एक बार रिक्शा की और रिक्शा वाले से पूछा कितने पैसे लेगा, उसने कहा 5 रुपए लूंगा। कहा हमको सारा शहर घुमा दो, जो मुख्य मुख्य जगह घुमाओ, जहाँ खाली मकान होगा वहां तुम रिक्शा ठहराना, हम पूछ लेंगे कि ये मकान वो हमको देंगे। तो कहा हमने काफी घूमा, एक मकान पान के नीचे दुकान थी, तो हमने देखा वहां रोशनी भी नहीं थी, दरवाजा भी बंद था, ऐसा लग रहा था कि ये मकान खाली है। तो हमने पान वाले से पूछा ये मकान खाली है? उस मकान का मालिक पान खाने के लिए उसी दुकान पर खड़ा था। तो उसने पूछा कि आप क्यों पूछते हैं? कहा जी हमको मकान चाहिए, हमने सत्संग करना है। तो उस मकान मालिक ने कहा मेरे दो मकान हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, वो आज तक भी लखनऊ में मकान है। तो कहा कि एक मकान मेरा खाली, एक में मेरी फैमिली आती है और मैं हम रहते हैं, एक मेरा खाली है, आप चलो तो चल के देख लो। और जाकर दादी ने कहा हमने देखा, हमको तो पसंद आ गया। तो तब से वहां सेंटर शुरू किया और वहां क्लास शुरू की, जो आज तक वो सेंटर चलता है। इस प्रकार ढूंढ ढूंढ के हम सारा शहर थोड़ा घूमेंगे और घूम घूम के कोई खाली मकान मिला तो वहां सेंटर खोल देंगे। ठीक इसी प्रकार दादी ने यहां भी किया। जब कमला नगर में हमने मकान को छोड़ना था, क्योंकि मालिक मकान को मकान खाली चाहिए था, उसके बच्चे जो कि छोटे थे, फिर उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, काफी बड़े हो गए, तो उसको मकान चाहिए था। और लगभग 30 वर्ष से किराए पर हम उस मकान में रहते थे। तो गुलजार दादी जी, जगदीश भ्राता जी ने ये कहा कि मकान किसी का है, उसने हमको दिया, ये उनकी मेहरबानी है। और 160 रुपए किराए पर मकान था, लेकिन हाउस टैक्स बढ़ने के कारण 180 रुपया किराया हुआ लास्ट 30 साल में, और उसमें पानी का बिल भी इंक्लूड होता था। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमको मकान की आवश्यकता है। तो दादी ने मुझे कहा चलो चक्रधरी, हम चल के देखते हैं कोई मकान खाली मिल जाए। तो ऐसे ही हम जाते थे थोड़ा राउंड करने के लिए, जहां लाइट बंद होती थी, दरवाजा बंद होता था, तो नीचे किसी से पूछते थे ये मकान खाली, तो कोई कहता था नहीं यहाँ रहते हैं, वो कहीं गए हुए हैं, कहीं हम बिजली नहीं है, लाइट बंद है, लगता कोई है। तो कभी कभी सीढ़ी भी चढ़ के चले जाते थे, देखे जरा शायद ये मकान खाली मिल जाए, और अच्छा मकान है, बढ़िया मकान है। लेकिन इस प्रकार तो नहीं मिला, मिला तो दूसरी प्रकार से था। लेकिन दादी जी का ये तरीका था कि क्यों नहीं हम स्वयं ढूंढ के मकान ले लेंगे। तो प्यारे दादी ने शुरू से लेकर सेवाएं बहुत की, और मैं जब प्रारंभ में वहां गई तो उस समय हमारे पास बहुत थोड़ा पार्ट था, थोड़े पार्ट में दूसरा किराएदार रहता था, थोड़ा पार्ट अपने पास रहते थे, लेकिन उसी मकान में रहते थे। तो मैं जब प्रथम बार, प्रथम तो नहीं कहेंगे, पहले त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, तो हम त्रिमूर्ति मैगजीन की सेवा अर्थ कभी कभी वहां पर जाती थी, कुछ लेख लिखना हो या फेयर करना हो, भाई सब के साथ ये कार्य करने के लिए। और जब मैंने ज्ञान में चली, थोड़ा समय ही अभी हुआ, मानो थोड़ा समय भी क्या है, मुझे घर में रहते मैंने बाबा को जब पत्र लिखा था, तो बाबा कहते हैं भगवान आ गया है, आप आ गए हो, तो आप मुझे पत्र लिखकर ये बताओ कि मैं आ गया हूँ। और बाबा ने मुझे घर के एड्रेस पर ही पत्र लिखा था कि बच्चे बाप तो आया है, और बाप तुम चक्रधर को मानती हो, तुम्हें ही चक्रधारी से चक्रवर्ती बनाने के लिए आया है, ऐसे बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे। तो मैं जब सेवा केंद्र में गई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कोर्स करके देखो, आपको पता चलेगा ज्ञान क्या है। तो मैंने कमला नगर में ही प्रारंभ में कोर्स शुरू किया था, और उस समय सुदेश बहन जो जर्मनी में थी और अभी ज्ञान सरोवर में है, मेरे से पूर्व कमला नगर में वो रहते थे, तो वो हमको कोर्स कराती थी। 3 दिन ही हुए होंगे कोर्स किए, तो गुलजार दादी जी हर कोर्स के बाद मुझे पूछती थी आज क्या सुना, आज क्या सुना, तो मैं उनको सुनाती थी आज हमको ये सुनाया। और तीसरे दिन ही मामा आ गई, और मामा ने आकर तो हमारा नाम ही, मैंने बाबा को पत्र में लिखा था कि मैं चक्रधर को मानती हूँ, और बाबा ने कहा बच्ची तुम ही चक्रधारी हो, और बाबा तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। लेकिन जब मैं मामा से प्रथम बार मिली तो मामा ने मुझे मेरी लौकिक मम्मी का परिचय मैंने दिया हुआ था, उस समय उनको यज्ञ माता कहते थे, तो मम्मी के साथ मुझे देखकर मामा पहचान गए। तो मामा ने फौरन मुझे देखते कहा, अच्छा आज हमारी चक्रधारी दी आई है। तो बाबा ने लिखा, मामा ने मुझे इस नाम से बुलाया और मेरा आज तक नाम चक्रधारी ही पड़ गया। तो किसी को वो नाम पता ही नहीं चला, लेकिन नाम चक्रधारी हो गया। तो इस प्रकार बाबा के लिखने से, मामा के बुलाने से नामकरण हुआ। घर में मुझे बाबा के सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं थी, हाँ आना जाना कभी कभी होता था। मैं एक बार कोई गिफ्ट कुल्लू से एक शॉल लाई, मुझे मन में आया मैं शॉल दादी को देकर आऊं, तो मैं दादी के पास गई। तो दादी उस समय हॉल में खड़े थे, तो दादी ने मुझे देखते ही ओम शांति की। मैंने कहा, दादी मैं छोटी सी आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो दादी ने गिफ्ट देखी, लेकिन मेरे गले में ऐसे हाथ डाल करके मुझे हॉल से बालकनी में होते हुए अपने कमरे में ले गए और ले जाके मुझे कहा कि चक्रधरी, मेरे साथ एक बहन रहती थी, अभी वो दूसरे सेवा केंद्र पर चली गई है, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन का डिसीजन तो मेरा यही है कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है। जहाँ इतनी अच्छी दादी है और ज्ञान के प्रवीण जगदीश प्राताची हैं, बहुत ही अच्छी बहनें हैं, तो क्यों नहीं मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। तो मैंने फौरन दादी को कहा, जी दादी मैं कल ही आ जाऊँ। और मैं दूसरे ही दिन, ये मेरा प्रथम दिन था जब मैंने अपने जीवन को प्रभु के बनने का संकल्प कर लिया, तो मैं दूसरे दिन 2:30-3 बजे का दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, दादी सो रहे थे, तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी मुझे कुछ करना है तो आप बता दीजिए। तो दादी ने कहा, नहीं मेरी खटिया के नीचे चटाई पड़ी है, वो निकालो और आप भी यहीं चटाई लगा के सो जाओ। क्योंकि उस समय यज्ञ में कोई खटियाएं नहीं होती थी, एक खटिया थी, वो भी नवार वाली खटिया थी, सिंध हैदराबाद कराची से आई हुई खटिया थी, और एक मेज था और 2 कुर्सियां थी, वो सिर्फ यज्ञ का सामान था, इतना ही सामान था, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता था। तो दादी ने मुझे कहा, चटाई निकालो और निकाल करके आप भी यहाँ सो जाओ, फिर उठ के काम करेंगे। तो मैं चटाई बिछाई, मुझे ऐसा लगा सचमुच मैं मखमल के गदेलों पर सो रही हूँ। बहुत खुशी मुझे हुई कि मुझे ईश्वर के घर में इतना स्थान और इतनी चीज मिली जिस पर मैं विश्राम कर रही हूँ। बहुत खुशियों का जीवन था, सिंपल जीवन। तो आज बताने में ये थोड़ी बातें आती हैं, उस समय तो ये बातें मालूम भी नहीं थी कि कमी किसको कहते हैं, भरपूरता की अनुभूति होती थी। तो इस प्रकार दादी के साथ हमको रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और दादी समय प्रति समय हमको बहुत अच्छी बातें सुनाया करती थी। कभी भी दादी ने मुझे कोई भी शिक्षा मुख से नहीं दी है, आज तक भी उन्होंने कभी मुख से मुझे कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं करो या ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमेशा मुझे करके दिखाया। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं पूरा करते ही मैं जब यज्ञ में आ गई तो मुझे घर में कोई काम काज करने का था नहीं, मुझे कुछ करना नहीं आता था। लेकिन दादी को जब देखती थी कि वो थोड़ा डस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे कपड़ा लेके मैं डस्टिंग करती थी कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। या कुछ भी काम जब दादी करने लगती थी तो मैं देखती थी, तो मैं भी वैसे ही काम करती थी। और दादी ने भी देखा कि मैं एक बार साड़ी, वैसे तो मैं पहनती नहीं थी, सलवार कमीज ही पहनती थी, तो दादी को जब मैंने ये कहा कि दादी ने कहा चटाई निकालो और सो जाओ, लेकिन दूसरे क्षण दादी ने फिर करवट बदली और मुझे कहा, चक्रधरी हो सकता है तुमको जमीन पर नींद ना आए, क्योंकि कईयों की आदत नहीं होती जमीन पर सोने की, और हमें यज्ञ में जमीन पर सोने की बहुत अच्छी आदत है, इसलिए मैं जमीन पर सो सकती हूँ, आप खटिया पर सो जाना, लेकिन मैं जब खटिया पर सोती हूँ तो जो भी भंडारे वाली माता है या जगदीश दाता जी हैं या मैं हूँ, हम सब अपने कपड़े तय करके धोने के बाद उनको थोड़ा पानी लगा करके अच्छी तरह तय करके इसी मेरी खटिया में रख देते हैं और दरी बिछी हुई है, खटिया पर सब कपड़े रख दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर चादर बिछा करके फिर मैं सोती हूँ तो प्रातः तक सबके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। इस प्रकार ये सारा कार्य करने के अर्थ मैं खटिया पर सोती। अगर आपको कोई हुक बटन ना चुभे तो आप खटिया पर सो जाओ, मैं जमीन पर सोऊंगी। तो मैंने कहा नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी जमीन पर सो सकती। तो मानो बहुत प्यार से चलाना किया। आज मैं देखती हूँ कई बहनें हमारी नई नई आती हैं जो घर से नहीं सीखी होती हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ये भी कर लें तो वो भी कर लें, लेकिन नहीं, वो नहीं जानते हैं। उनको प्यार से स्नेह से चलाकर ही हम उनको ईश्वरीय मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। कैसे हमको हमारे बड़ों ने चलाया, किस प्रकार प्यार देके स्नेह देके। मैं एक बार धोती पहन ली, अब धोती को जब धोने लगी तो मैं समझती पूरी चक्की लेकर मैं बैठी हुई थी, मैं घिसाती चली जाऊं, लेकिन धोती तो पूरी हो ही नहीं, 6 मीटर धोती, मुझे लगे टेंट धो रही हूं मैं, खूब लगी रही। लेकिन जब गुलजार दादी जी ने देखा कि ये कब से धोती धो रही है लेकिन इसको धोने नहीं आ रही, तो दूसरे दिन किसी माता को कहा कि आप चक्रधरी बहन के कपड़े ले जाना, उसको साफ करके ला के फिर देना। तो वो मुझे इशारा, मेरी भी स्थिति का इशारा समझते थे और मैं भी उनका इशारा ही समझती थी। इशारे इशारे में ही दादी ने बहुत जीवन में परिवर्तन लाया और हमें जीवन में पढ़ना लिखना सिखाया, कैसे वाणी पढ़नी है, कैसे क्लासेस करानी है। क्योंकि दादी जब भी क्लास कराते थे तो डायरेक्ट पकड़ के मुरली नहीं पढ़ते थे, पहले कुछ अच्छी सी बातें सुना करके फिर मुरली पढ़ते थे। और दादी कभी नहीं होते थे तो मुरली तो मैं पढ़ लूंगी लेकिन मैं अच्छी बात कैसे सुनाऊंगी। तो मैं कहती थी दादी आपको तो बाबा रोज कोई ना कोई अच्छी बात सुनाता है क्योंकि आप ध्यान में जाते हो, लेकिन मुझे तो बाबा नहीं बताता, मैं क्या बताऊं, मुरली ही मैं पढ़ सकती हूँ। तो फिर दादी ने कहा नहीं, कोई भी बात लेकर उस पर विचार सागर मंथन भी करते, कभी बाबा की बताई हुई बात भी मैं बताती हूँ, लेकिन कई बार बाबा के बताए हुए ज्ञान रत्नों पर विचार सागर मंथन करके उन मंथन की हुई बातों को अगर हम सबसे शेयर करते हैं तो हमारा विचार बहुत सुंदर चलता है। इस प्रकार हर बात हमको सिखाते थे। और दादी का मुझे याद है जब उनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन भी कैंसर का था, और हम भी वहां पर गई थी हॉस्पिटल में, बहुत देर लग गई और दादी बाहर नहीं आई, तो मुझे बहुत हुआ क्या बात है दादी बाहर क्यों नहीं आए। तो मैं अंदर चली गई तो दादी रिकवरी रूम में थे, तो मैंने कहा दादी कैसे हो, तो दादी बिल्कुल होश में ठीक ठाक थे। तो दादी ने कहा ऑपरेशन अभी होना है या हो गया, क्या है। मैंने कहा दादी ऑपरेशन आपका हो गया। तो दादी को ये पता ही नहीं कि हो गया या होना है अभी। तो डॉक्टर ने दवाई दी थी कि ये दर्द ज्यादा हो तो ये गोली इनको देनी है। तो दादी ने कहा मुझे इतनी जैसे किसी को नाखून चुभ जाए, उस चुभन की भी दर्द है, मुझे नाखून चुभन जैसी भी दर्द नहीं, तो मैं गोली किस लिए खाऊं। तो दादी ने कोई गोली नहीं उस समय खाई दर्द की। और ऐसे शाम को ही दादी बाहर, क्योंकि उसमें कुछ पाइप वगैरह लगा देते थे, कुछ पानी वगैरह निकलता था, लेकिन बाहर टहलते रहे छत पर जैसे कुछ नहीं है। तो दादी के कई ऑपरेशन ऐसे हुए जिस पर मुझे भी मौका मिला कि मैं दादी के उस समय साथ थी। गोल्ड ब्लैडर निकाला, किस प्रकार भरा हुआ था पथरियों से, लेकिन शाम को दादी जब ऑपरेशन से बाहर आई तो सबसे बातचीत ऐसे कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मानो उस आत्मा ने हंसते हंसते अपने हर प्रकार के कष्ट को निवारण किया। ठीक है लास्ट में बहुत से कष्ट भी आए, और वो तो बाबा हम बच्चों को क्या कहता है। साकार बाबा की बात मैं कई बार सुनाती हूँ, संदेशी द्वारा अलमैती बाबा को ब्रह्मा बाबा ने संदेश दिया कि मुझे बहुत खांसी आती है, और बाबा को कहना कि आपको मुरली चलाने में कितनी दिक्कत होती है, इसलिए प्लीज आप थोड़ी खांसी मेरी ठीक कर दो तो आपको मुरली चलाना सहज हो जाएगा। तो अलमैती ने संदेशी द्वारा संदेश भेजा कि मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम कर लूंगा, तेरे कर्म का खाता तुझे ही पूरा करना होगा। तो दाता हम बच्चों को सुना देता है, ठीक है बाबा की सेवा में कोई है, सर्वस्व उसने सेवा में दे दिया, लेकिन जो जन्म जन्म के पुराने हिसाब किताब हैं, वो तो बच्चों को ही चुप तो करने। और कैसे हमारी दादियों ने बड़े बड़े हिसाब किताब हंसते हंसते चुकतु किए हैं, और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत्र बने कि अपने जीवन को अनेक आत्माओं की सेवा में उन्होंने लगाया और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले गए। आज मैं कहती हूँ ऐसी महान विभूति जिसने विश्व भर की आत्माओं की सेवा की, ये एक ही महान विभूति रही प्यारे बाबा मामा के बाद। उस महान विभूति के द्वारा हम सर्वशक्तिवान बाप दादा से मिलन मनाते रहे, ऐसी महान विभूति पुनः हमको कहाँ और कब मिलेगी। बहुत बहुत हृदय से अपने आदरणीय दादी जी को मैं हृदय के श्रद्धा पुष्प अर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर दादी जी के साथ के अनुभव हमने आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से सुने। हमने सुना कि कैसे दादियों ने अपनी त्याग और तपस्या से बाबा की सेवा की। उन दिनों में उनको रहने खाने का भी कोई इतना प्रबंध नहीं था, लेकिन बाबा के साथ जो उनका अटूट संबंध और अटूट निश्चय था, उस आधार पर वो अपनी सेवाओं में आगे बढ़ते गए। और आज ये विद्यालय अपने इस वर्तमान स्थिति तक, जो कि हम कहें 140 देशों में बाबा की सेवाएं हैं, वो दादियों की त्याग तपस्या से ही पहुंचा है। अभी आदरणीय दादी जी के निमित्त एक गीत बनाया हुआ है, जो वीडियो सॉन्ग है, वो आपको दिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद हम शुक्ला दीदी जी से दादी जी के साथ के अनुभव सुनेंगे।
बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, तुम छोटे बच्चे बन जाओ, 100 साल के भी बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या करता है, जाता है बाहर, कोई ने मारा, कोई ने कुछ किया, बाकी आएगा मम्मी इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, फिर खेलने चला जाए, भूल जाता है ना। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे को दे दो ना बाबा, ये हो गया खत्म, दिल से निकालो, अंदर नहीं रखो।
आदरणीय शुक्ला दीदी सरकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए अनमोल रतन हैं। लगभग 70 वर्ष से आप ज्ञान में हैं और 60 से भी अधिक वर्षों से बाबा की समर्पित रूप से आप सेवाएं दिल्ली हरिनगर में कर रहे हैं। वैसे आप पंजाब अमृतसर से ज्ञान में चले, लेकिन वर्तमान में आप हरिनगर के लगभग 150 सेवा केंद्रों की निर्देशिका हैं और आपके दादी जी के संघ के से कहा दादी जी के साथ राइट हैंड बनकर के दिल्ली जोन में आपने सेवाएं दी हैं, तो आपके बहुत ही अनमोल अनुभव हम सुनेंगे।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। त्याग और तपस्या की धनी, दिव्य गुणों की खान, दिव्य शक्तियों की खान दादी गुलजार, प्रभु की तो पसंद है ही, परंतु हम सब की पसंद है जिसका साक्षात्कार आज भी हमने किया अच्छी तरह से अपने नैनों से। बहुत महान महान भाग्यशाली आत्मा है जो सारे विश्व के अंदर सब उनको बड़े प्यार की नजर से देखते हैं और भगवान ने भी अपना छोटा नदीगढ़ आपको ही बनाया। भगवान के भी पसंद है। क्यों पसंद है? कोई चीज, कोई भी आत्मा समस्त विश्व को पसंद हो, जरूर उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, धारणाएं होती है, शिष्टाचार होता है, सभ्यता होती है और प्रभु के प्रति समर्पणता होती है। क्योंकि जब तक उस परम पिता परमात्मा के जो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का भंडार है और हमारा पिता है, उनके आगे समर्पणता नहीं है तो कुछ नहीं। हमने दादी के जीवन में एक बात विशेष देखी कि वो बहुत समर्पणता में थी। ज्ञान में अच्छे परिवार में आई, जैसे चक्रधारी बहन ने बताया, आज सवेरे भी उनका आपने बचपन का रूप देखा। उस रूप को देखने के बाद ही लगता है कि ये आगे चलकर, ये शोभा आगे चलकर कोई होनहार साक्षात्कार मूर्त बनने वाली है। बाबा ने भी उनके नयन, उनकी वाणी, उनकी धैर्यता, उनकी मधुरता और उनका त्याग और तप देखकर बाबा ने उनको अपना ही रथ बनाया। मेरी पहली मुलाकात जब मैं दिल्ली में आई, वैसे तो मैं ज्ञान में 1955 में आ गई थी, पर पहली मुलाकात 1960 में हुई। जब मैंने दादी को देखा तो क्या पारस मणि की तरह वो चमक रही है, रूहानियत उनके चेहरे में है और बहुत सरल हृदय, नम्र चित, संयम नियम मर्यादाओं के अनुकूल चलने वाली आत्मा दिखाई पड़ी, जिसको देख करके मुझे बहुत उनके व्यक्तित्व से बहुत मैं प्रभावित हो गई। जैसे चक्रधारी बहन ने बताया कि वो उन दिनों में कमला नगर सेंटर रहते थे। कमला नगर का सेंटर बहुत छोटा होता था, परंतु दादी जी, जगदीश भाई, चक्रधारी बहन उन दिनों में नई नई आना शुरू किया था, है ना, तो ये सब लोग वहां पर और कारोबारी इतना देख करके मुझे लगा कि इतने छोटे से घर में ये लोग कैसे मिलजुल करके रहते हैं और कैसे मान सम्मान देते हुए और एक शान के अंदर रहते हैं। क्योंकि नशा भी, जगदीश भाई का नशा देखो, गुजार दादी का नशा देखो, तो अपने ही प्रकार था और फिर निश्चिंत अवस्था। मैंने अच्छी तरह से गुलजार दादी को देखा, वो बहुत निसंकल्प और निश्चिंत अवस्था वाली थी। मुझे याद आता है कि वो इतनी निसंकल्प रहती थी तो और किसी के साथ जल्दी हिलमिल करके बोले चाले ऐसा नहीं होता था, अपने में रिजर्व रहती थी। परंतु जब से बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तब से लेकर के बहुत इनमें चेंज मैंने देखा, शक्ल में भी चेंज, क्योंकि पहले बहुत दुबली पतली भी होती थी, और सब बातों में मैंने चेंज देखा और बहुत स्मार्टनेस इनके अंदर आ गई, क्योंकि बहुत बड़े थे, बड़ा सर्वशक्तिवान बाप दादा उनके तन में प्रवेश करता है तो उसका फल भी तो उनको मिलेगा। कहते हैं ना, जहाँ बड़ों की आशीर्वाद हो, बड़ों का संग हो और बड़ों की प्रवेशता हो तो उस व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति आ जाती है ना? और फिर वो अपने आप बात करती थी, पहले तो उनको आगे से भी गुजर जाए तो वो निसंकल्प निश्चिंत होकर रहती थी। मुझे याद आता है कि फरीदाबाद में मेरे साथ जब वो गई पहली बार तो उस दिनों में बेगरी लाइफ थी, तो दादी जी एक आदर्श टीचर के रूप में भी कैसे हम लोगों को उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किसी के साथ बात करनी चाहिए, क्या हमारी पोशाक होनी चाहिए, कितना कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य होना चाहिए, ये सारी बातें दादी जी ने हम सबको सिखाई। दादी जब ओआरसी में, क्योंकि हम ओआरसी में भी रहते थे तो दादी बीच बीच में ओआरसी आया करती थी और आकर के कैसे हम लोगों का जीवन होना चाहिए पूरा घुल मिल के रहती, और साथ में एक आदर्श ब्रह्म कुमारी के क्या लक्षण होने चाहिए वो दादी जी ने प्रैक्टिकल चल करके दिखाया। उसके साथ सिर्फ सन्यासी नहीं है, हम राजयोगी हैं तो राजयोगियों को सिर्फ चुप करके योगी नहीं लगाना, खेलना कूदना मिलना, दादी यहाँ तक बैडमिंटन भी खेल लेती, दादी और भी अनेक प्रकार की खेले हम लोगों के साथ करती, जिससे कि दादी आई माना बाहर आई और वही ये शिक्षा देती थी कि देखो तुम कहीं भी जाओ तो सब समझे कि ये हमारे लिए एक बाहर आ गई है, खुश हो जाए, खुशनुमा वातावरण रहे, और साथ में ये भी समझे कि हमारा समाधान स्वरूप आया है। ऐसी शिक्षा हम लोगों को देती थी कि समाधान स्वरूप आया है, समस्या नहीं है, समाधान स्वरूप आया है। तो फिर वो ट्रेनिंग भी हम लोगों को इस तरह से दिया करती थी और हम दादी की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते समझते और उसको फिर फॉलो करने की कोशिश करते। फिर दादी का मुरली के ऊपर भी बहुत ध्यान रहता था और हम लोगों को ये कहती थी देखो बाबा श्रेष्ठ उत्तम पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत कुछ वाणी के अंदर शिक्षाएं भी देते हैं, वाणी के अंदर बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताते हैं और आप लोग जब तक वो बात आपके जीवन के अंदर धारण नहीं हो जाए तब तक रिवाइज करो। और ये बात बहुत अच्छी है कि कोई भी बात है, जैसे मैं आत्मा हूँ, हम ऊपर ऊपर से कहते रहे आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं बच्ची हूँ, उसे क्या होगा, परंतु अंतर मन में जाकर के उसको बार बार रिवाइज करो और अपने आप को अटेंशन दिलाओ, फिर साथ साथ चेकिंग करो, जब तक मेरा वो स्वरूप नहीं बन जाता तब तक उसके पीछे लगे रहो। ये बात दादी की हमारे को बहुत अच्छी लगती थी कि कितना एक अच्छा आदर्श व टीचर बनना हम बच्चों बहन भाइयों को सिखाती है। और दूसरा उनके अंदर एक बहुत बढ़िया गुण मैंने जो देखा कि मुझे सबसे नंबर वन में जाना है और अपने साथ जो भी साथी हैं उनको भी नंबर वन में ले जाना है, और खास करके दिल्ली वालों के साथ तो दिल्ली में गुलजार दादी बाबा की दिल, हम दिल्ली वालों की दिल है, और दादी भी दिल्ली वालों को ऊंचा उठाने के लिए एक बात बार बार रिमाइंड करवाती हम लोगों को कि हमारे को दिल्ली, सारे संसार में, सारे विश्व में जैसे दिल्ली को राजधानी माना जाता है, ऐसे दिल्ली वाले नंबर वन लेकर के संसार को दिखाए कि हम वो व्यक्ति, वो माली से पले हुए हैं, वो फूल हैं जो सारे संसार में अपने गुणों की, अपनी धारणाओं की, अपनी सेवा की प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से दादी हम लोगों की पालना करती थी। तो जब ऐसी दादी के साथ हम दिन रात रहते थे तो बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, और बहुत कुछ मुझे एक बार दादी की सिंपल सिटी बहुत अच्छी पसंद थी। दादी बीमार थी तो दादी दूसरा कपड़े पहनती थी, गौन जैसे पहनती है, तो दुपट्टा पहनती थी ऊपर से। तो एक दिन मेरे को दादी का दुपट्टा देखकर थोड़ा ख्याल आया, मेरे पास दो अच्छे अच्छे दुपट्टे रखे थे जो कॉटन के थे परंतु एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। मैं दादी को बोला, दादी आप ये थोड़ा स्वीकार करेंगे? कहा, नहीं शुक्ला, हम सेवादारी, विश्व के आगे हम एग्जाम्पल है, और ये कढ़ाई वाला दुपट्टा हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब दादी के मुख से मैं ये शब्द सुना तो मुझे लगा कि देखो कितना ये सचमुच त्याग और तपस्या की धनी है। और मैंने देखा जिन बच्चों का दिल से त्याग है, तपस्या है, वो क्या से क्या बन गए। शुरू से भी देखा दादी के जीवन, और आज भी देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन, कितना परिवर्तन, कितना लोग आज उनके नाम पर जीवन लगा देते हैं। और पहले दादी कहाँ कहाँ जा जा करके जो सेवा की वो आप लोगों ने सबने चक्करधारी बहन के मुख से सुना। तो जहाँ दिल से सच्चा बाबा के साथ जिसका प्यार है, समर्पणता है और नियम मर्यादित जीवन है, और सबसे बड़ी जो हमारी शान है, मान है, वो है पवित्रता, मंदक पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, कर्म में पवित्रता, सब प्रकार से जब हम सतोप्रधान बन जाते हैं तो सुगंध दुनिया में अपने आप फैलती है, सुगंध को बुलाया नहीं जाता, है ना। तो दादियों के अंदर वो सुगंध, ईश्वरीय सुगंध, एक बल और भरोसे सुगंध हमने देखी, और आज जिन्होंने उनको फॉलो किया उनका जीवन भी क्या से क्या बन गया, जो हमने अपने जीवन के अंदर भी अच्छी तरह से जान के देखा। और आज भी चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए परंतु एक बाबा अगर याद है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा साथी और सारथी है, तो उसके आगे कोई संसार का विघ्न हो, कोई परीक्षा आए, वो तोहफे के समान हो जाती है, समझा। अगर यज्ञ के इतिहास के पन्ने खोल करके देखे तो यज्ञ के आगे स्टार्टिंग में बहुत परीक्षाएं आई, और इतनी परीक्षाएं आई जो दादियों के आगे सांप भी डाल देते थे उनकी परीक्षा लेने के लिए, ना कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु आज उन एक बल, एक भरोसा और निश्चय बुद्धि होने, आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास की नींव मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ती गई। और आज संसार के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर डिप्रेशन है तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाओ, हैं? कितनी बड़ी बात है ना। तो ये सब उन महान हस्तियों की देन है जिन्होंने त्याग, तपस्या और बाबा के हाथ में हाथ रखकर निश्चय से चलती गई तो सब विघ्न अपने आप समाप्त होते गए, और आज ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व के अंदर मानी जाती है, गाई जाती है, पूजी जाती है। ओके, ओम शांति।
तो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी ने कैसे अपनी पालना से, शिक्षाओं से सबको सजाया, संवारा, और कैसे इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, वो हमने शुक्ला दीदी जी से सुना। अभी हमारे बीच रजौरी गार्डन की शक्ति बहन जी हैं, आप भी 1969 से बाबा के ज्ञान में हैं और लगभग 50 वर्षों से आप समर्पित रूप से दिल्ली में ही रजौरी गार्डन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप रुक्मणी दादी जी जो दिल्ली जोन के जोन हेड थे और गुलजार दादी जी के लौकिक में आप मासी भी थे, उनके अंग संग रहकर के आपने सेवाएं दी हैं। तो अभी हम आपसे थोड़ा संक्षिप्त में दादी जी के अनुभव सुनेंगे। शक्ति बहन जी,
ओम शांति। आज हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी के विषय में सुबह से हम सभी बहुत ही सुंदर सुंदर उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके कर्म, उनका व्यवहार सुन रहे हैं। मैंने दादी जी को पहली बार 68 में जब बाबा अव्यक्त हुए तब से मैं दादी जी को जानती हूँ और उनके नज़दीक आई। बाबा जब बाबा रूम में ही मिला करते थे, अव्यक्त बाप दादा, तब हम चार जने लौकिक में मामा जी, एक और बहन अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे। तो मैंने तो दादी जी को जैसे ही देखा, बाप दादा की प्रवेशता हुई, उस टाइम में मुझे शिव बाबा दादी जी के तन में आते हैं, अव्यक्त बाप दादा क्या होता है समझ नहीं थी। लेकिन मैं दादी जी से, अव्यक्त बाप दादा थे दादी जी के तन में, पर मैं दादी जी ही समझ रही थी, दृष्टि लेती रही। कंटिन्यू 15 मिनट दृष्टि ली होगी तो दादी जी की आंखें मुझे इतना प्रभावित कर गई, इतना प्रभावित कर गई कि वहां पर बाबा के रूम में बैठे बैठे मैं सुध-बुध भूल गई कि मैं कोई हूं। आत्मा जो समझ में आया था उस स्थिति में स्थित होकर बैठी थी। तो ऐसे पहली बार जब दादी जी से मिली तो बहुत बहुत प्रभावित हुई। उसके पश्चात फिर मैं जब दिल्ली चली गई, बहुत सी कन्याओं को मैंने कहा ऐसे ऐसे भगवान जी आते हैं, दादी जी के तन में आते हैं और इस प्रकार से दृष्टि देते हैं जो आप एकदम अपने तन को भूल करके और आत्म अभिमानी बन जाते हैं। ऐसा ज्ञान आत्मा का सुना हुआ था तो उनको भी सुनाया। इस प्रकार से दादी जी से जब प्रभावित हुई दिल्ली में, फिर हम क्योंकि गुरुद्वारा रोड पर जब सेंटर था तो दादी जी के जो लौकिक मदर आलोंडर दादी जी, उनके पास अक्सर हम जाया करते थे, मेरे लौकिक मामा जी और मैं भी। तो दादी जी से सिर्फ दृष्टि लेते थे, ओम शांति करते थे, तो उसी से बहुत आत्मा को इतनी शक्ति मिल जाती थी जो बहुत औरों के लिए भी सेवा में कार्य करती थी। इसी प्रकार से जैसे हम चलते गए, ज्ञान में चलते रहे, यज्ञ में एक बार जो गिफ्ट दी जाती है उसका बंद करने के लिए कहा गया कि ये गिफ्ट लेना देना बंद करो। तो दादी जी जिस सेंटर पर आई, दिल्ली कुतुब मीनार के पास मेहरोली में सेंटर था, तो गिफ्ट देना नहीं था, दादियों ने मना किया था, लेकिन वहां की बहन ने कहा कि ये छोटी बालकी है और इससे हम गिफ्ट दिलाएंगे, ये चुप रहती है, क्योंकि बचपन में मैं बहुत बहुत कम बोलती थी, चुप रहती थी। तो उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट देगी तो दादी जी को हर हालत में लेनी पड़ेगी। तो दादी जी ने क्लास कराया, सभी से दादी जी मिले। लास्ट में जब दादी जी वहां से जाने लगे तो इस तरह से मैं गिफ्ट लेकर के खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। दादी जी ने कहा, अरे गिफ्ट थोड़ी देते हैं, ये तो यज्ञ में मना है देना। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था और मैं भी पत्थर की मूर्ति की तरह से ऐसे खड़ी रही। तो दादी जी जो वरदानों की खान है, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही कि ये योगिनी लग रही है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे इससे गिफ्ट लेनी पड़ेगी। तो दादी जी ने वो वरदान मेरे लिए बन गया जो योगिनी कहा। मेरे सामने जो भी परिस्थितियां आई, मैं दादी जी को सामने रखती थी और बाबा को याद करती थी और वो परिस्थिति मेरी किस प्रकार से खत्म हो जाती थी पता भी नहीं पड़ता था, क्योंकि समस्या समाधान के रूप में जब हम याद करते हैं तो समाधान हो ही जाता है। इसी प्रकार से राजयोग भवन बना, वहां पर हम रहते थे और दादी जी राजयोग भवन में अक्सर आया करते थे, क्योंकि जब तक हमारा ओआरसी नहीं बना था, जितने भी हमारे जोन के प्रोग्राम होते हैं वो रजौरी गार्डन ही हुआ करते थे। तो दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी तो और भी अधिक अपने आप ही राजयोग भवन में आते थे। तो एक बार दादी जी आए हुए थे, मैंने कहा दादी मेरी दिल कर रही है कि मैं आपके साथ कहीं सफर करूं, आप मुझे लेकर के जाएं, मगर दादी जी मैं ये भी चाहती हूं कि मैं फ्लाइट में आपके साथ जाऊं। तो उस टाइम तो बात खत्म हो गई, लेकिन अचानक दादी जी को बॉम्बे जाना पड़ा। बॉम्बे दादी जी जा रहे थे तो रुक्मणी दादी को कहा, रुक्मणी बहन शक्ति की एक आश है, आप उसको पूरी कर दो ना। तो दादी ने कहा, कौन सी आश है? कहा, ये कहती है मैं आपके साथ जाऊं और फ्लाइट में जाऊं। उस टाइम में घाटकों पर जो हमारा सेंटर नलनी बहन जी थे, वहां की सिल्वर जुबली थी, तो वहां दादी जी जा रहे थे। तो दादी ने कहा, ठीक है ये चाहती है और आप ले जाते हैं तो ले जाओ। तो मेरा दादी के साथ प्रोग्राम बना और मैं फ्लाइट में बॉम्बे गई। तो दादी जी के साथ जब हम फ्लाइट में बैठे तो पहले वो टॉफी वगैरह ऐसे देने के लिए आते हैं, तो दादी जी ने तो नहीं लिया, मुझे दादी जी ने कहा आप लीजिए ना। मैंने कहा, दादी जी मैं भी ये टॉफी वॉफी नहीं खाती हूँ। तो दादी जी ने कहा, अच्छा आप भी नहीं खाते हैं, आप इतने, मतलब मैं बहुत छोटी हूँ और दादी जी इतने रिस्पेक्ट से, क्योंकि दादी हर किसी को छोटा है बड़ा है हम शरीक है रिस्पेक्ट भी देते थे और रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार भी देते थे। तो दोनों बातें, प्यार से कहा, रिस्पेक्ट से कहा, आप नहीं खाते हैं तो आप तो बहुत ही धारणा मूर्त हैं, पक्की ब्रह्मा कुमारी लगती हैं। मैंने कहा, दादी जी कुछ भी समझिए लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। तो बॉम्बे में 8 दिन में दादी जी के साथ रही। दादी जी उस टाइम में अपना सब कुछ करते थे, दादी जी के साथ कोई ब्राह्मणी नहीं थी, तो मैं थोड़ा भी दादी को बोलती थी, दादी ये कार्य मैं आपका कर दूं, ये कार्य मैं कर दूं, तो दादी जी कहते थे, नहीं मैं अपने आप कर लूंगी, आप बैठिए। तो भी रिस्पेक्ट से प्यार से अपने आप ही सारे कार्य करते थे। और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता था, क्योंकि दादी जी जब रजौरी गार्डन आते थे तो रजौरी गार्डन में दादी जी बड़े अधिकार से भोजन खाते थे और पहले ही कह देते थे कि ये भोजन बना करके रखना। दादी को तोरी बहुत पसंद थी, तो मुझे इतना इतना खुशी होती थी कि मैं भगवान के रथ के लिए भोजन बना रही हूँ। और बहुत प्यार से आकर के दादी जी स्वीकार करते थे, तो ये भी मुझे अपने ऊपर बहुत नाच है। साथ साथ कभी भी, जैसे मुन्नी दीदी ने भी कहा और भी एक बहन ने कहा, कि कोई मन में बात होती है या कुछ मन कभी उदास होता था, कोई ऐसी बात होती थी, तो मैं दादी जी को फोन करती थी कि दादी जी मैं आ जाऊं आपसे मिलना है। तो दादी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं। मुझे याद आता है एक बार रात्रि 10 बजे थे, मेरा जन्मदिन था, सारा दिन किसी ने मनाया नहीं, कोई मुझे विश भी नहीं किया किसी ने। तो मुझे मन में आया कि देखो बाबा के घर में रह रहे हैं और किसी ने बर्थडे की विश भी नहीं की। तो मैंने दादी जी को फोन किया रात्रि 9:45 बजे। ऐसे ही मैंने तो फोन किया कि दादी मुझे हैप्पी बर्थडे कह देंगी। तो मैंने दादी को फोन किया, दादी ने कहा तुम आ सकती हो अभी, क्योंकि मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ। तो मैंने कहा दादी आप कहेंगे तो क्यों नहीं आऊंगी, अभी तो फ्री टाइम है, दिन में तो बहुत सेवाएं करते हैं और रात्रि तो अपनी होती है, मैं जरूर आती हूँ। तो मैं रात्रि को 10 बजे गई, बहुत अच्छा गुलदस्ता रास्ते से खरीदा, दादी जी को दिया और दादी जी ने इतना सुंदर मेरा बर्थडे 20-25 मिनट में सेलिब्रेट किया। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद अपनी माँ भी इस तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट करे। उस जमाने में तो पहले होता भी नहीं था, पर दादी जी ने बहुत सुंदर गिफ्ट भी दी और साथ साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इसी तरह से दादी को कई बार, जब दादी जी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला होता था तो दादी जी को डॉक्टर ने पार्क में घूमने के लिए कहा हुआ था, तो कहीं भी, जैसे दिल्ली में बुद्धा गार्डन है और भी कई गार्डन है, तो नीलू बहन मुझे फोन किया करते थे, क्योंकि होंडा सिटी गाड़ी थी, किसी ने गिफ्ट की थी, अच्छी गाड़ी थी, हम दादी जी को बिठा सकते थे। तो दादी जी को ले जाती थी मैं, दादी जी का रथवान भी बनी। ये भी मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो दादी जी को घुमाने का, दादी जी मेरे साथ बैठे। तो मुझे याद आता है बहुत सुंदर लौकिक गीत बज रहे थे गाड़ी में, मैंने वो बंद नहीं किए, लेकिन स्पिरिचुअल गीत थे, भक्ति के गीत थे। तो दादी ने कहा अरे कितने अच्छे गीत हैं नीलू, तुम शक्ति से ये कैसेट ले लेना, क्योंकि उस टाइम वो कैसेट ही उसके अंदर लगती थी गाड़ी के, और ये कैसेट लेकर के मुझे ये सुनाना। तो दादी जी इतनी इनोसेंट कि लौकिक गीत कौन से होते हैं और बाबा के गीत कौन से बने हुए हैं, इतना भी अंतर दादी जी को नहीं मालूम होता था। दादी जी इतने पॉजिटिव, इतने स्पिरिचुअल और इतनी उनके अंदर प्योरिटी, हर बात को पॉजिटिव लेते थे। इसी तरह से एक और बात याद आती है, रजौरी गार्डन में कोई ऐसी घटना घटी थी, मैं कहीं बाहर झंडा लहराने गई हुई थी, अचानक दादी जी रजौरी गार्डन आए और मुझे फोन पहुंचा कि ऐसे से दादी जी आई हैं, आप आओ। तो मैंने समझा नीलू बहन मजाक कर रही हैं, फिर तारा बहन का फोन गया तो भी मैंने सोचा तारा मजाक कर रही है, मैं अपनी सेवा में लगी रही। फिर रुक्मणी दादी का फोन गया, कितने फोन तुम्हें कर लिए, तुम आ नहीं सकती हो। मैंने कहा दादी मैं समझ रही हूँ कि शायद ये मजाक कर रही हैं और अचानक दादी जी कैसे आएंगे, कहते जल्दी जल्दी आ, तुम दादी आए हुए हैं। तो उस दिन हमारे यहाँ एक घटना घटी थी बहुत जबरदस्त, रजौरी गार्डन में व्हाइट वॉश हो रही थी और बहुत ऊंचा स्थान था और व्हाइट वॉश करने वाला व्हाइट वॉश कर रहा था, अचानक उसका पांव स्लिप हुआ और पांव स्लिप होने से वो नीचे गिरा, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। उधर से दादी जी आ गई, उधर उसकी डेथ हो गई, उसको खैर हॉस्पिटल में ले गए, इधर उधर ले गए, मगर दादी जी का पांव पड़ने से, उनके वाइब्रेशन से, जो हमारा एक बहुत बड़ा केस बनना था पर वो केस इस तरह से नहीं बना कि जो, क्योंकि रुक्मणी दादी और मैं, हम दोनों जेल जा सकते थे, मगर दादी जी के आने से इतने पावरफुल वाइब्रेशंस कि वो केस भी हमारा खत्म हो गया, जो मतलब बनना था लेकिन सब उसी दिन खत्म हो गया। तो इस प्रकार से दादी जी हमारे इतने महान हस्ती, तपस्विनी, राजयोगिनी और सबसे बड़ी बात बाबा का रथ छोटा नंदी, बहुत सारे दादी जी के साथ के अनुभव हैं, जो सुबह भी सुन रही थी कि कैसे दादी शांति की मूर्ति थी। रजौरी में कोई ऐसे बात हुई, क्योंकि दादी जी जोन इंचार्ज थे और उनके साथ में रुक्मणी दादी जी सब संभालते थे, तो दादी जी आए, गुलजार दादी जी, रुक्मणी दादी जी बैठे थे, वो पार्टी सारी बैठी हुई थी, सारे के सारे बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, 6 घंटे लगातार मीटिंग चलती रही। गुलजार दादी जी एक बार भी नहीं बोले। लास्ट में दादी ने कहा, रुक्मणी दादी ने कहा, दादी जी कुछ तो बोलो आप। कहा, रुक्मणी बहन, ये ऊपर की बात है, प्रकाशमणि दादी जाने, जैसे ऊपर कहेंगे वो हम मानेंगे, अब मैं चली, बस इतना बोले। तो ऐसे दादी हमारी निरसंकल्प देवता भी थे, धैर्यता पेशेंस की धनी थी, समाने की शक्ति। हम सबको दादी जी इस प्रकार से आगे बढ़ाते। आज हम सभी उन दादियों के आगे बढ़ाने से, उनके ही पालना से, वरदानों से इस स्थान पर बैठे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। उन दादियों की तो जितनी महिमा करें, जितने अनुभव सुनाएं, उतने कम हैं। ऐसी थी हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी, जिनकी पालना में हम पले, वरदानों से पालती रही, हर गुण में नेचुरल नेचर उनकी रही, तो उनकी छत्र छाया में हम पलते पलते आज यहाँ पर हैं। ऐसी मीठी प्यारी दादी जी को हम अपनी दिल की गहराइयों से स्नेह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।
दादी सभी को, चाहे छोटे हों या बड़े हों, बहुत ही सम्मान और स्नेह देते हुए आगे बढ़ाते थे, ऐसा हमने शक्ति बहन के अनुभवों से समझा। और अभी मैं निवेदन कर रही हूँ, आशा बहन, आप खानपुर दिल्ली संबंधित सेवा केंद्रों की संचालिका हैं, 48 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप भी साकार बाबा से मिले हैं, अपनी अल्पायु में, बाल्यावस्था में आप साकार बाबा से मिलकर, बाबा से आपने शक्ति ली है, और सोशल विंग की आप दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप भी अपने कुछ अनुभव बहुत संक्षिप्त में हमारे समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी का संपूर्ण जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना उज्ज्वल, इतना पवित्र प्रेरणा स्रोत रहा, जो एक एक आत्मा यदि अपना अनुभव सुनाए तो बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ जो बहुत थोड़े से अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगी। दादी जी का एक बार मालवीय नगर सेवा केंद्र पर आना हुआ और वहां पर उस समय सफाई का कार्य चल रहा था, सभी सफाई करने में व्यस्त थे। शुरू में इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी कि बताना कोई जरूरी हो, क्योंकि पूरा ही परिवार, सभी सेवा केंद्र एक परिवार की रीति से रहते थे। तो आदरणीय जगदीश भाई जी और आदरणीय दादी जी, दिल्ली में एक स्थान नेहरू प्लेस का है, वहां पर वो आए थे एक मेले के लिए, ग्राउंड और स्थान को देखने के लिए। और जब वापसी में लौटे तो मालवीय नगर में आए और वहां पर वो स्थूल कार्य में सभी व्यस्त थे, मैं भी सहयोगी बनी हुई थी। लेकिन दादी ज्यों ही आई और दादी से इतने प्यार से हम मिले और दादी ने इतना प्यार दिया
कि दादी ने ये नहीं देखा कि इनका ये क्या कार्य कर रहे हैं, इनके कपड़े इस समय साफ नहीं हैं, लेकिन जैसे कि दादी ने अपने गोदी में अपने प्यार में सभी को ऐसे ले लिया था कि सभी बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही भरपूर हो गए। दादी वहां पर अनेकों बार ऐसे ही आया करती थी। वहां पर छत बहुत बड़ी थी और छत पर सभी एक साथ फोल्डिंग बेड वो खोल करके बिछा देते थे और उसपे सभी सोया करते थे। तो वहां का जो एरिया है वो एयरपोर्ट जोन में आता है, तो प्लेन्स वहां से बहुत सारे जाते हैं। तो दादी जी भी वहीं उसी फोल्डिंग पलंग पे सोई, हम सभी बहनें भी आदरणीय सुंदरी बहन जी सभी वहीं पर। और जब प्लेन्स आए तो दादी उठ करके बैठ जाएं और गिनती करें, अभी एक, फिर अभी दूसरा आ गया, फिर तीसरा। लेकिन दादी एक एक छोटी छोटी चीज से कैसे शिक्षा दिया करती थी। दादी ने कहा कि देखो ये प्लेन्स उड़ते हैं, तो ऐसे में पुरुषार्थ में भी उड़ना है। पुरुषार्थ का हमारा हर कदम उड़ने वाला होना चाहिए, ये दादी ने बताया। दादी रात्रि के समय चंद्रमा को देखती थी और चंद्रमा को देखते योग लगाती थी। और बाद में जब हम सुबह पूछते थे, दादी आप तो कभी प्लेन्स की गिनती कर रहे थे, कभी चंद्रमा को देख रहे थे, तो दादी चंद्रमा के लिए भी बताती, देखो ये ब्रह्मा बाबा ना हमारे चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या होता है, बहुत शीतल होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन काल में भी कभी गुस्सा नहीं किया, तो शीतल रहे, इसलिए ब्रह्मा बाबा को हम चंद्रमा कहते हैं। तो हमें कैसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, हमें शीतल स्वभाव वाला बनना है। हम उड़ कब सकेंगे, जब हम स्वभाव को शीतल बनाएंगे। वैसे जो स्थूल कार्य कर रहे होते थे तो दादी कहती थी कि देखो स्थूल सेवा के भी बहुत नंबर होते हैं, यदि स्थूल सेवा करते हैं तो तन हमारा निरोगी बनता है, और स्थूल सेवा करने से जो बाबा की दुआएं मिलती हैं वो बहुत अधिक मिलती हैं। इसलिए स्थूल सेवा करते भी कभी थकना नहीं है, परंतु अपनी स्थिति को हमेशा अच्छा बनाना है। ये दादी छोटी छोटी चीजों को बताकर ध्यान खिंचवाती थी। एक बार हम मधुबन पांडव भवन में आए हुए थे और ओम शांति भवन में वहां पर सभी क्लासेस हुआ करती थी, मुरली भी वहीं होती थी। तो दादी जानकी जी भी और दादी गुलजार जी भी दोनों मंच पर थे और हम सामने सभा में बैठे हुए थे। जैसे मुरली पूरी हो गई तो दादियों को गुड मॉर्निंग करने के लिए मंच के सामने आकर हम खड़े हो गए, तो गुड मॉर्निंग की। तो दादी ने उस समय कहा, गुलजार दादी ने जानकी दादी को कहा, ये ना हमारी दिल्ली की छोटी आशा है, ये हमारी दिल्ली की आशा है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, आज भी मैं उस शब्द को याद करती हूँ तो दादी के प्रति जो गहरा प्यार है वो उमड़ आता है। दादी ने बहुत सारे वरदान समय प्रति समय हमें दिए। अभी हमारा एक सेवा केंद्र पुष्प विहार, साहू दिल्ली में एक स्थान है पुष्प विहार, वहां पर कुछ समय पूर्व प्लैटिनियम जुबली का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूरा रशिया की भी टीम और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित जी आई थी। बहुत बड़ा वो प्रोग्राम प्लैटिनियम जुबली का था, तो सारे बड़े मंच पर खड़े होकर के और दादी जब खड़ी थी, जैसे अव्यक्त बाप दादा आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, ऐसे उस दिन दादी ने मंच से, वहां की मंच से, पुष्पा भवन की मंच से ऐसे खड़े होके दादी ने आशीर्वाद दिया। जानते हो उस एरिया में हम बहुत समय से स्थान देख रहे थे कि यदि हमें वहां का स्थान मिल जाए तो वहां एक सेवा केंद्र बनाएं, बहुत अच्छा वो पॉश एरिया है। इतने समय हम प्रयास करते रहे लेकिन सफलता तब मिली जब दादी जी ने मंच से ऐसे आशीर्वाद दिया। और उसी तरफ दादी का ये आशीर्वाद का हाथ था और आज वहां पर बहुत बड़ा सेवा केंद्र बन रहा है। और दादी ने उस केंद्र के लिए अपने हाथ से कुछ सहयोग दिया, इतना अच्छा वो पर्स, एक बैग दिया, मैं उसको हमेशा संभाल कर रखती हूँ और मैं अनुभव करती हूँ वो बैग कभी खाली नहीं होता, एकदम भरपूर भरा हुआ रहता है। दादी ने उस सेवा के लिए दिया, लेकिन कैसे माँ बाप अपनी सेवा करा रहे हैं, दादी निमित्त बन के सेवा कर रही हैं, तो मुझे तो ये लगता है हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। और सचमुच वो जीवन को बाबा और दादी ही संभाल रहे हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं और सदा ऐसे ही उड़ते रहेंगे। और जो बाबा की सेवाएं हैं, जो दादियों की उम्मीदें हैं, वो हम पूरी करते रहेंगे। दादी को शत शत नमन करते हैं आज के दिन पर। ओम शांति।
आदरणीय दादी जी ने कदम कदम पर बाबा को फॉलो किया, बाबा को ही अपने स्वरूप के द्वारा, विशेष अपने नैनों के द्वारा प्रत्यक्ष किया। मुझे याद है हमें भी ड्रामा में ये सौभाग्य मिला, जब हम मधुबन में सेवा में आए तो हमें जो रहने का स्थान मिला था, जो कमरा था, वो दादी जी के ठीक ऊपर था। तो बहुत बार ऐसा मौका होता था कि जब हम कमरे से आते जाते थे तो कई बार दादी जी भी आ रही हैं या जा रही हैं, तो ऐसे बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आते जाते दादी की वो स्नेह की दृष्टि हम पर पड़ जाती थी। और जिस दिन दादी की दृष्टि मिल गई उस दिन तो ऐसे लगता था कि बस खुशी में जैसे उड़ रहे हैं, माना इतनी पावर थी दादी की दृष्टि में। तो ऐसी हमारी दादी साइलेंस के शक्ति के पुरुषार्थ वाले थे। और अभी लास्ट में हमारी लक्ष्मी बहन जी, जो आप दिल्ली लॉरेंस रोड सेवा केंद्र की संचालिका हैं, आप 40 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दिल्ली जोन में दे रहे हैं, आपने भी दादी जी के साथ के अनुभव किए हैं, तो आपसे भी हम संक्षिप्त में सुनेंगे।
ओम शांति। आज हमारी दोनों दादियों का स्मृति दिवस है और दोनों ही दादियां मेरे जीवन में विशेष रोल मॉडल हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं बचपन से ज्ञान में थी, माताजी के साथ आना जाना होता था और समर्पित होने का लक्ष्य नहीं रखती थी, लेकिन 74 की हमारी कुमारियों की भट्टी रजौरी गार्डन की, उसके बाद बाबा मिलन, और इतना नशा था कि मैं उस समय 8th स्टैंडर्ड में थी और मैं माता जी की साड़ी लेकर के और मैं साड़ी पहनूंगी और बाबा से मिलूंगी। और बाबा से मिली, बाबा के कमरे में अव्यक्त बाप दादा आए थे तो वहां पर हम मिले, और उसके पश्चात पढ़ाई लिखाई में चले गए ज्यादा। तो 81 में मैं बाबा से मिली मेडिटेशन हॉल में, और बाबा ने वरदान दिया बच्ची को डबल सर्विस करनी है। तब मैं सिंगल सर्विस में भी नहीं थी। तो उसके पश्चात मैं बाबा के यज्ञ में सेवा पर रही और डेली पांडव भवन में रही, और डेली गुलजार दादी से मिलना होता था। और दादी मुझे कहती, लक्ष्मी तुम मुरली लिखती हो बाबा की? तो हमने कहा, गुलजार दादी, जी दादी। तो कहा कि मेरे को दो कॉपी लिख करके देना, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है ना? मैंने कहा हाँ दादी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत साफ है। और कहा यहाँ से तख्ती ले लो, वो बोर्ड जो है, और कार्बन लगा करके तुम मुझे दो कॉपी देना। तो मैं चार कॉपी लगाती थी, चार कॉपी निकालती थी और दो कॉपी दादी को देती थी। और दादी जब बाबा चले जाते थे तो उसी समय मैं दादी के कमरे में आती थी, और दादी वही मेरे हस्तों से लिखी हुई मुरली पढ़ती थी, क्योंकि उस समय टाइपिंग वगैरह होने में टाइम लगता था। तो मैं इमीडिएट जाकर के देकर के आती थी, और एक कॉपी दादी अपने पढ़ने के लिए रखती थी, और एक दादी उसी समय लिफाफे में पैक करके और पांडव भवन दिल्ली में भेजा करती थी, और तीसरी कॉपी मैं अपने लिए रखती थी, और चौथी कॉपी थोड़ी धुंधली होती थी। तो इस तरह से दादी बहुत प्यार से वही ही मुरली पढ़ती थी, और बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चला कि मैं बाबा एक दिन छोड़ करके एक दिन आते थे, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो वही मुरली दादी पढ़ा करती थी। और मेरा पहले समर्पित होने का लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, नहीं था, लेकिन बस इच्छा थी कि मैं ट्रेनिंग कर लूं। तो जैसे ही ट्रेनिंग की तो वहां पर हमारी राज दीदी अशोक विहार से खास मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ गई पांडव भवन में। और उस समय प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी का प्रोग्राम था, और उसी बहाने वो आई, और उन्होंने ही दादी को कहा, चंद्रमणि दादी को, कि ये कन्या को मुझे चाहिए, ये कन्या। तो दादी ने कहा ठीक है। तो मेरे से पूछा कि लक्ष्मी आप जाओगी? तो मैंने कहा हाँ दादी, अशोक विहार जाऊंगी, रजौरी नहीं जाऊंगी, अशोक विहार जाऊंगी। तो दादी ने मेरा हाथ राज दीदी के हाथ में दिया, और तब से मैं समर्पण रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ 40 साल से। तो दादी बहुत प्यार करती थी मुझे, चंद्रमणि दादी भी। जब यहाँ पर ये नया कॉम्प्लेक्स बना था शांतिवन का, और बड़े बड़े हॉल थे, 100-150 लोगों के इकट्ठी चारपाइयाँ होती थी, तो वो दिन शाम का था, तो दादी हमारे हॉल में आई, और वो पटार वाली चारपाई थी तो उस पर बैठी थी, और दादी बड़ी अच्छी रूरूहान कर रही थी हमसे। और दादी मेरे को इतने प्यार से ऐसे हाथ पकड़ के कि लक्ष्मी तुम सिंधी कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा दादी मुझे किसी ने बुलाया थोड़े ही था जब मैं आती। तो दादी कहती है तेरा अपना घर था ना, तुझे अपने घर में अपने आप आना चाहिए, तो आज से तुम अपने घर में अपने आप आया करो। तो ऐसा दादी का प्यार, और दादी उसी चारपाई पे जैसे हंसते हंसते, जैसे बहुत अच्छे से उमंग उत्साह में दादी आ जाती थी, और हंसते हंसते जैसे आधी लेट ही गई जैसे दादी। तो बहुत प्यार दादी का मिला। और गुलजार दादी तो हमारा दिल्ली में भी मिलना होता था, क्योंकि मैं अशोक विहार जिस सेवा केंद्र पर समर्पित हुई तो वहां से दादी का बहुत 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 स्नेह था, और हर दो तीन मास के बाद दादी का वहां चक्कर लगता ही था, कभी ब्रह्मा भोजन के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी तो दादी वैसे भी आ जाते थे। और दादी जब भी आते थे तो वहां पर दादी को भोजन कराने की ड्यूटी मेरी ही होती थी, और दादी बहुत प्यार से जो जो पसंद होता था दादी को वही हम बनाते थे दिन में और दादी को खिलाते थे, और लास्ट में दादी हमें भी बड़े प्यार से गिट्टी खिलाती थी और बहुत अपने साथ बिठाती थी, कभी चम्मच से कभी गिट्टी खिलाती थी, कभी समोसा खिला, दादी को नमकीन बहुत पसंद था। और उसके पश्चात हम लॉरेंस रोड जब सेवा केंद्र उसका उद्घाटन हुआ तो हमें कहा गया कि आपको वहां पर रहना है, तब भी हमने देखा कि दादी कितनी सरल चित है और दादी बहुत प्यार से, जब भी हम कहते थे दादी ऑलमोस्ट जन्माष्टमी के दिन हमेशा आती थी, हमारे गोपाल भाई भी सामने बैठे हैं, भाई सब भी दादी के साथ आते थे, और दादी को जैसे ही हमने दोपहर को कहा दादी आप शाम को आएंगे हम जन्माष्टमी मनाएंगे तो आप आएंगे, तो दादी इतने सरल स्वभाव, हाँ मैं शाम को आ जाऊंगी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि दादी ना सबसे पहले हमारे पास ही आ जाती थी, फिर अशोक विहार जाती, शालीमार बाग जाती, तो अभी हमारे बच्चे तैयार भी नहीं हुए होते थे तो दादी पहले ही 6:30 7 बजे ही आ जाती थी, अभी बच्चे तैयार ही हो रहे होते थे, लेकिन दादी इतने कोई बात नहीं, दो टोली दो इनको खिलाओ और हम आगे चलेंगे, तो इतने प्यार से दादी आ जाते थे सरल स्वभाव से। और जब मैं ज्ञान सरोवर बन रहा था उस समय तो दादी ने कहा तुम्हारा समर्पण समारोह हुआ है, मैंने कहा नहीं दादी, तो कहा कि करें तुम्हारा समर्पण समारोह, तो मैंने कहा दादी जैसे आप ठीक समझे, तो दादी ने खुद ही मुझे मोटिवेशन दिया और खुद ही बड़ी दादी से बात की और खुद ही इंद्रप्रस्थ में दादी को बिठाया और मुझे कहते तुम्हारे को क्या पहनाऊं, अंगूठी पहनाऊं या बैज, मैंने कहा दादी अंगूठी है, तो अच्छा ठीक है फिर आज हम आपको बैज पहनाएंगे। तो इंद्रप्रस्थ में दादी को बुलाया और भी दादियां थी तो उनके साथ ही मुझे बिठाया सिंपल एकदम से, दादी इसको ना बैज लगा के इसका समर्पण कर दो, तो बहुत प्यार से दादी ने वहीं पे ही इंद्रप्रस्थ में पांडव भवन में हमारा ऐसे सिंपल समर्पण, तो बहुत अच्छे से। और दादी जब बीमार हुए और उसके पश्चात हम दादी से मिलने के लिए गए, तो मिलने के लिए गए तो जैसे ही दादी अपने कमरे में थी, दादी इस बेड पे, और दादी ने हमको कहा आप इधर बैठो साथ वाले बेड पे, और एक हमारे साथ सिंधी भाई थे तो उनको कुर्सी पे बिठाया सामने दादी के कमरे में, तो दादी ने छूटते ही हमारी खुशी की क्लास कराई, 10-15 मिनट दादी ने खुशी के ऊपर कि सदा खुश रहना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से दादी ने खुश, नहीं तो जनरली पेशेंट्स को देखने के लिए जाते हैं तो जनरली क्या होता है, ये बीमारी आई, टेस्ट हुआ, ऐसे डॉक्टर ने बोला, ऐसे कहा, ऐसे किया, और फिर मैं बॉम्बे गई, ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, सारे विस्तार पेशेंट से सुनाता है। तो मैंने देखा कि दादी ने एक भी बात, एक भी संकल्प, कोई अपनी बीमारी का वर्णन नहीं किया, तो ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि कभी भी बीमारी का वर्णन या वातावरण नहीं बनाना है, तो क्या करना है, उनको और ही जो आने वाले हैं, पूछने वाले हैं, तो उनमें हम ज्ञान और योग का फोर्स भरे। तो ये हमने दादी के उसमें देखा कि दादी बॉम्बे से आई है और हम मिलने के लिए गए हैं और दादी ने कोई बीमारी का वर्णन नहीं,
और बड़े अच्छे से और ही हमारी क्लास हमारी पालना करके हमको भेजा टोली दे करके। तो इस तरह से दादी के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से हमको ये बीमारी का वर्णन नहीं करना है। और लास्ट एक अनुभव और सुनाती हूँ, समय भी हो रहा है। तो दादी के बॉम्बे जाने से पहले हमारी आशा दीदी ने बड़ी बहनों की भट्टी रखी थी ओआरसी में, और ओआरसी में भट्टी रखी, शाम को भी भट्टी हुई और सुबह कहा कि गुलजार दादी अमृत वेला आप सबके साथ करेंगी। और हम सबको कुर्सियों पे ऐसे हाफ सर्कल में बिठा दिया गया, सब बड़ी बहनें थी। तो दादी ने 15 मिनट 20 मिनट योग कराया स्टेज पर बैठ करके, उसके बाद दादी उठ करके एक एक के पास गई और हम बैठे हुए हैं और दादी खड़े होकर के हमको इतनी पावरफुल दृष्टि दे रही हैं, इतनी पावरफुल दृष्टि दे रही हैं। वो दृष्टि आज भी मेरे नैनों में समाई हुई है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं और दादी एक एक के पास जाकर के और दृष्टि दे रही हैं अमृत वेले। तो वो अमृत वेला इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था, वो आज भी हमें बहुत ही शक्ति देता है। तो ऐसी दादी ने हमारी बहुत बहुत पालना की है, दिल्ली वालों की तो खास पालना की है। और दिल्ली वालों को दादी हमेशा कहती थी दिल्ली माना A1, दिल्ली माना A1। तो A1 का ही दादी का लक्ष्य दिया हुआ है हम दिल्ली वालों को। अभी भी हमें संकल्प रहता है कि हमें सदा A1 ही आना है। तो और दादी तो जैसे मुझे अपना रोल मॉडल लगती हैं। तो जैसे दादी हमेशा कहती थी साधारण संकल्प नहीं करो, साधारण चाल नहीं। तो कर्म योगी का जीवन क्या होता है कि दादी मेरे सामने हमेशा रोल मॉडल के रूप में रहती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज दादी जी को, दोनों दादियों को शत शत नमन है। आज श्रद्धांजलि है हमारी यही कि हम उनके जीवन से जो सीखा है वो धारण करें और दूसरों को भी धारण कर पाएं। ओम शांति।
आज हमारी दो महारथी दादियों की पुण्यतिथि है, आदरणीय चंद्रमणि दादी जी जिन्हें बाबा शेरे पंजाब कहते थे, जो पंजाब जोन के हेड रहे। फिर बाद में आदरणीय दादी जी ने जब ज्ञान सरोवर बना तो उन्हें ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर बनाया। तो हमारी दादियां सभी ओम मंडली के समय से ही बाबा की सेवा के निमित्त बने हुए विशेष आधार स्तंभ रहे। तो अब दोनों दादियों को याद करते हुए हम दोनों के प्रति अपनी भावांजलि, स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि जैसा जीवन उन्होंने जिया, जो उनके जीवन की धारणाएं थी, उन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते चलें। और अभी लास्ट में भी हम दादी जी के लिए बना हुआ एक वीडियो सॉन्ग देखेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम शांति।
सबे सने ही बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच गई। हरे की दिल यही बोल रही है, मेरा बाबा
का हमें रंग वो देता।